ज्ञान और न्यारा, उन दोनों की शादी हो चुकी थी। वो दोनों चुपचाप सामने सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, बहुत बार बोलना चाहा था, बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, मगर कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। घर में जैसे फैसला पहले ही लिया जा चुका था और अब किसी की सुनवाई नहीं होनी थी। अपने दादाजी की वजह से न्यारा ने सबसे पहले हथियार डाल दिए थे। वो अपने दादाजी से बेहद प्यार करती थी। सच पूछें तो उन तीनों बच्चों, दो बहनें और एक भाई में अगर दादाजी को सबसे ज्यादा कोई प्यारा था तो वो न्यारा ही थी। दादाजी की एक नज़र, एक आह, एक खामोशी न्यारा से सब सहन ही होता था। इसीलिए उसने बिना कोई विरोध किए चुपचाप अपनी मॉम की साड़ी पहन ली। उसकी आंखें भरी हुई थीं, मगर उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ज्ञान ने भी बहुत देर तक खुद को संभालने की कोशिश की थी। वो भी लड़ना चाहता था, बोलना चाहता था, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी तो आखिरकार उसने भी हथियार डाल ही दिए। फिर उन दोनों की फेरे करवा दिए गए। रस्में एक एक करके पूरी होती चली गईं। सिर्फ फेरों की रस्में खत्म होते होते शाम ढल चुकी थी और कब रात हो गई किसी को ठीक से पता ही नहीं चला। उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। निया फ्लाइट से आई थी। जैसे ही वो अंदर आई, उसने अपनी मॉम से बात करते हुए कहा, मैं आ गई हूँ। क्या हुआ मॉम, दादाजी को क्या हुआ? आपने फ़ोन करके इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वो बात करते हुए अंदर बढ़ी और सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। सोफे पर ज्ञान और न्यारा साथ बैठे थे। पहली नज़र में ही वो हैरान रह गई, मगर हैरानी तब और गहरी हो गई जब उसकी नज़र न्यारा की मांग में भरे सिंदूर पर गई और फिर ज्ञान के माथे पर लगे पीले टीके पर। ये साफ बता रहा था कि वे दोनों अब कपल हैं, शादीशुदा। निया खुद एक बेहद काबिल वकील थी। उसकी नज़र छोटी छोटी बातों को तुरंत पकड़ लेती थी। वो हालात को पढ़ना जानती थी। उसने एक पल दोनों को देखा, फिर धीरे से अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। मॉम, ये क्या है? वो बोल तो पाई, मगर उसकी आवाज़ में यकीन नहीं था। फिर उसकी नज़र कमरे में बैठे बाकी लोगों पर गई। ज्ञान की मॉम, डैड और दादाजी सब वहाँ मौजूद थे। निया को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसे ये भी पता नहीं चला कि इतनी बड़ी बात उसकी गैर मौजूदगी में कैसे तय हो गई। वो वहीं खड़ी रह गई, हैरानी, सदमे और सवालों के बीच। समझ गई। पूरी बात जानने के बाद भी निया अब तक हैरान थी। उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था कि इतने बड़े फैसले उसकी गैर मौजूदगी में कैसे हो गए। तो क्या तुम्हें ये सब पता था? निया के दादाजी ने उससे पूछा। नहीं, निया ने आने साफ जवाब दिया। निया ने घबराते हुए कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि न्यारा कहाँ रहती है। दीदी, मैंने तो आपको बताया था कि मैं कहाँ रहती हूँ, निया बीच में बोल पड़ी। मेरे कहने का मतलब ये है, निया ने अपनी बात साफ करते हुए कहा, कि मैं कभी इसके फ्लैट पर नहीं गई, मगर तुम इसकी बड़ी बहन हो, तुम्हें थोड़ा तो इसका ध्यान रखना चाहिए था। ये सुनकर न्यारा के दादाजी ने सख्त लहजे में कहा, अब इसका ख्याल तो मैंने ही रखा था, इसकी नौकरी मैंने ही लगवाई थी, निया ने कहा। नौकरी लगवाई थी? न्यारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। के डेस्टिनी में नौकरी लगवाई थी आपने? मेरी नौकरी? निया ने तीखे स्वर में कहा। आपकी सिफारिश पर थी, मेरी काबिलियत पर नहीं? इतना कहकर वो घूमकर ज्ञान की तरफ देखने लगी। ये बात सच है? उसने सीधा सवाल किया। हाँ, ज्ञान ने बहुत धीमी आवाज में कहा। शाम ने कहा गया था। अगर मुझे ये पहले पता होता, न्यारा गुस्से से बोली, तो मैं कभी उस नौकरी को ज्वाइन ही नहीं करती। बेटा, ज्ञान की माँ ने बीच में नरमी से कहा, तुम अपनी डेस्टिनी की मालकिन हो, तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें घर चलना चाहिए, अजय कपूर ने माहौल बदलते हुए कहा। नहीं, नरेश बेदी ने तुरंत कहा, आप लोग खाना खाकर ही जाएंगे, अब तो आप हमारे रिश्तेदार हो गए हैं। ज्ञान और न्यारा की मॉम और डैड, चारों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रिश्तेदारी बन जाने की खुशी, बचपन और कॉलेज की दोस्ती अब रिश्तों में बदल चुकी थी। मगर न्यारा इस वक्त शादी से ज्यादा इस बात पर गुस्से में थी कि उसकी जिंदगी में बिना पूछे दखल दिया गया था, उसकी काबिलियत को नज़रअंदाज किया गया था और उसकी मर्जी को कुचल दिया गया था। और ज्ञान, वो अजीब तरह से शांत था। उसके अंदर कोई बेचैनी नहीं थी। उसके चेहरे पर न दुख था न घबराहट। शादी से पहले उसने बहुत कोशिश की थी, वो बात अलग थी, मगर शादी के बाद वो चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे उसने हालात को स्वीकार कर लिया हो। न्यारा गुस्से में जल रही थी, मगर अभी धमाके खत्म नहीं हुए थे। वो एक बुटीक था जहाँ लेडीज कपड़े मिलते थे। असल में यही वो बुटीक था जहाँ माहिरा अक्सर आया करती थी और इसी वजह से अरमान नूर को यहीं ले आया था। अंदर बहुत सारी ड्रेसेस थीं, खूबसूरत, स्टाइलिश, मगर ज्यादातर बहुत महंगी। नूर की नज़र बस एक ही चीज ढूंढ रही थी, सबसे सस्ता कपड़ा। उसने बिना ज्यादा देखे एक पार्टी वेयर ड्रेस पर हाथ रख दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि ड्रेस कैसी है, किस रंग की है। उस वक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था, बस यही ध्यान था कि वो सबसे सस्ती हो। असल में वो एक रेड कलर का सलवार सूट था। कुर्ते के गले पर हल्का सा वर्क था और सलवार की पाइचों पर स्टाइलिश लेकिन बेहद सिंपल डिजाइन था। नूर ने वही सूट ले लिया। वो वहीं तैयार हो गई। बुटीक में मेकअप स्टूडियो भी था। अब नूर, अरमान ने कहा, तुम्हें मेकअप भी करना होगा। नूर ने फौरन कहा, प्लीज बहुत हल्का सा। हाँ, अरमान ने समझाते हुए कहा, यहीं करवा लो, नहीं तो मेकअप का सामान खरीदना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी नूर ने वहां हल्का सा मेकअप करवा लिया। तुम आ जाना, अरमान ने कहा, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूँ। अरमान ने काउंटर पर पैसे दिए और बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी ही देर में नूर तैयार हो चुकी थी। रेड कलर के सलवार सूट के साथ उसका न्यूड मेकअप था, एक ऐसा नो मेकअप लुक जो उसे बेहद मासूम और प्यारा बना रहा था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नूर को खुद भी इसका अंदाजा नहीं था। वैसे नूर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ आंखों में काजल लगाया करती थी और बालों को ज्यादातर पीछे पूनी की शक्ल में बांध कर रखती थी। जब तक वो अपने उस छोटे से शहर में थी, बाहर निकलते वक्त ऊपर से चादर लेती और दुपट्टा सिर पर डालकर ही चलती थी। ये उसकी जिंदगी में शायद पहली बार था जब उसने ऐसा मेकअप किया था। नहीं तो उनके खानदान में जब भी शादियां होती थी उतना ही मेकअप करती थी जितना उसे खुद आता था, बस हल्का सा। उसे अभी सजने संवरने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, आखिर वो सिर्फ 18 साल की ही तो थी। जैसे ही वो बुटीक से बाहर निकली, गाड़ी में बैठे अरमान की नजर उस ब्राउन आंखों वाली लड़की पर पड़ी और वो पल भर के लिए देखता ही रह गया। रेड कलर का सलवार सूट जिसके साथ गोल्डन दुपट्टा था, चेहरे पर हल्का सा न्यूड मेकअप और बाल पीछे खुले हुए मगर आगे से सलीके से पिनअप किए हुए। नूर अब भी घबराई हुई थी, मगर अरमान तो जैसे उसे देखता ही रह गया। और उसके हुस्न का दीवाना सिर्फ राशिद और अरमान ही नहीं था, कोई और भी था, कोई ऐसा जो नूर को देखकर उसे पूरी तरह लूटने वाला था। नूर की यही खूबसूरती आने वाले वक्त में उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, इसका अंदाजा ना तो नूर को था और ना ही अरमान को। नूर कहाँ है, अभी तक नहीं आई, रिहाना बेगम ने सादिया से पूछा। ताई अम्मी, वो सुबह से माहिरा के घर गई है, सादिया बोली, तो मुझे लगता है वो उसी के साथ आएगी। मैं उससे कहूंगी कि इतना टाइम ना लगाया करे, रिहाना बेगम ने कहा। सुबह से गई है, अब तक आ जाना चाहिए था, आगे से वो नहीं जाएगी। तभी तैयार होकर आए फैजान ने कहा, जो वहां अरेंजमेंट देख रहा था। अच्छा, रिहाना बेगम हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। क्या वहां कुछ हुआ था, सादिया ने फैजान से पूछा। नहीं, हुआ तो नहीं, फैजान ने टालते हुए कहा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। हाँ, सुबह तुमने मुझे फोन किया था, सादिया बोली, कोई काम था क्या?
उम्मीद करती हूँ मेरी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।